ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राज्योत्सव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जगदलपुर और वन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा में किया जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ। इसरो ने आज शाम श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का किया प्रक्षेपण। खाद्य विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाइल पीवी ऐप सत्यापन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। और धमतरी जिले के राजा डेरा जलाशय के टेल एरिया के पास बांध के टूटने से बेलोना कोरगांव सहित दर्जनों गांव प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आज से 3 दिवसीय राज्योत्सव की शुरुआत हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यहां लगाए गए विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल में जाकर विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही हितग्राहियों से भी चर्चा की। इस अवसर पर श्री साव ने आमचो बस्तर हाट कियोस्क का उद्घाटन कर कला गुड़ी कैटलॉग का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना सहित सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों को सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा नक्सल मुक्त किया जा रहा है। बस्तर अब देश और दुनिया में अपनी उत्कृष्ट कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन के लिए जाना जा रहा है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा जिले के मेंढक डोबरा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि एक समय था जब दंतेवाड़ा का नाम सुनते ही भय और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब दंतेवाड़ा जिला शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क और विकास के हर क्षेत्र में नई दिशा की ओर अग्रसर है। इस मौके पर श्री कश्यप ने जिला प्रशासन द्वारा राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इधर 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में आयोजित हो रहे रजत महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। पहले दिन कल राज्य की ऐश्वर्या पंडित, पीसी लाल यादव, आरू साहू, दुष्यंत हरमुख, निर्मला ठाकुर ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं राष्ट्रीय कलाकार हंसराज रघुवंशी ने भी अपने भजनों से समा बांध दिया। आज दूसरे दिन मुंबई के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक आदित्य नारायण के अलावा छत्तीसगढ़ के कलाकारों में सुनील तिवारी, जयश्री नायर और पद्मश्री डोमार सिंह कंवर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज शाम श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 GSAT-7R का प्रक्षेपण किया। इसे भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में पहुंचाया गया। यह भारी रॉकेट शाम 5:26 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ। इस मिशन का उद्देश्य नौसेना संचार को बेहतर बनाना और सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की 5वीं परिचालन उड़ान है। यह उपग्रह एक बहुबैंड सैन्य संचार प्रणाली है। खाद्य विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाइल पीवी ऐप सत्यापन की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इसे किसानों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से और अधिक पारदर्शिता तथा सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। गरियाबंद जिले में शोभा और जुगाड़ थाना क्षेत्रों में जंगलों में पुलिस ने भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। इनमें 4 कुकर बम, इलेक्ट्रिक वायर, फटाका और राशन सामग्री शामिल है। पुलिस ने साइबिन कछार, कोदोमाली और भूत बेड़ा के जंगलों में जांच अभियान के दौरान सामग्रियां बरामद की। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि माओवादियों ने यह सामान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपा कर रखा था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा माओवादियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने महारजिस्ट्रार कार्यालय ने जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध आधार होगा। इस तिथि से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2023 के बाद से जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। पूर्व में जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मैनुअल पद्धति से जारी किया गया था उनके लिए भी अब पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान उपलब्ध है। इससे पुराने प्रमाण पत्र भी डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मंत्रालय में रामनामी समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान रामनामी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपने पारंपरिक मोर मुकुट से अलंकृत करने की इच्छा जताई। इस पर प्रधानमंत्री ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए इसे भावनात्मक और प्रेरणादायी पल बताया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय अपने तन मन और जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देता है, यही उनकी जीवन साधना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस आत्मीयता में भक्ति और कर्म की अद्वितीय संगम झलकता है। यह दृश्य इसकी पुष्टि करता है कि राम भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र साधना है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने शौर्य पदक सम्मान की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के मौके पर सुकमा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ रहे शहीद आकाश राव गिरपुंजे समेत 14 पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही बीजापुर के निरीक्षक धर्म सिंह तुलावी, सहायक उप निरीक्षक गोपाल बोडू, नारायणपुर के शहीद प्रधान आरक्षक बीरेंद्र कुमार शोरी सहित 10 आरक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। अलंकरण समारोह 5 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कोरबा जिले की लेखनी साहू ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने लेखनी साहू से उनके अनुभवों पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि ऐसे युवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने लेखनी को समाज सेवा के कार्यों में जुड़े रहने को कहा। गौरतलब है कि लेखनी साहू राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की छात्रा है और उन्हें बीते 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा जागरूकता और शासन की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया था। देश में विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है। मंडल द्वारा यह सुविधा 31 अक्टूबर से शैक्षणिक संस्थाओं जैसे स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत मंडल की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4363 पर परामर्श प्रदान किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हर शुक्रवार को विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति और संतुलित जीवन शैली अपनाने के उपाय बताएंगे। धमतरी जिले में स्थित राजा डेरा जलाशय के टेल एरिया के पास बांध का एक हिस्सा टूटने से नाले का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बांध के नीचे बसे बेलोना, कोरगांव, शुक्लाभाटा और आमाचानी सहित दर्जनों गांव में किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने कहा कि नाले के पास धान की फसल लगी हुई है जो पूरी तरह पककर तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि नाले में बाढ़ आएगी तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। सिंचाई विभाग के SDO रविन्द्र कुंजाम ने बताया कि बांध की मरम्मत की तैयारी की जा रही है। बांध का टेल एरिया टूटने की जानकारी उच्च अधिकारी को दे दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को बांध के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी महीने में राजनांदगांव में आयोजित की जाएगी। इसी के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आज से स्थानीय युवाओं के लिए निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। पेंड्रा के शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मैदान में यह प्रशिक्षण शिविर 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक युवाओं को हर दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में वे सभी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने इस साल जुलाई महीने में आयोजित अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राज्योत्सव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जगदलपुर और वन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा में किया जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ। इसरो ने आज शाम श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का किया प्रक्षेपण। खाद्य विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाइल पीवी ऐप सत्यापन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई और धमतरी जिले के राजा डेरा जलाशय के टेल एरिया के पास बांध के टूटने से बेलोना कोरगांव सहित दर्जनों गांव प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।